देखिए, या मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जब तक हम अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत और उनकी सुन्नत, उनके किरदार से नहीं आगाह करेंगे, कल दीन का हाल क्या हो जाएगा? इसकी एक छोटी सी मिसाल लें कि अब इस वक्त हम सब अपने आप को देख रहे हैं, किसी का 5 फुट कद है, किसी का 4 होगा, किसी का 6 भी होगा। हमारे अंदर किस चीज़ का ढांचा बना हुआ है? हड्डियों का है ना, हड्डियों के ऊपर गोश्त और चर्बी चढ़ती है ना। आप किसी ऐसे इंसान का तसव्वुर लाइए कि जिस्म से उसकी सारी हड्डियां निकाल दी गई हैं, तो क्या होगा? वो एक गोश्त का लोथड़ा है ना। सुन्नत की अहमियत दीन में स्केल्टन की होती है, ढांचे की होती है। जैसे ये बिल्डिंग बनी तो पहले इसका ढांचा बना ना, पाइपें लगाई, लोहे की तार लगाई और न जाने क्या कुछ करके एक बन गया। फिर उस पे आप देख रहे हैं, हमें ना तो इधर सीमेंट दिख रहा है, ना हमें इधर लोहे की चीज़ें, ना गार्डर दिख रहे हैं, क्योंकि वो इसके अंदर है। और अगर खुदा ना खास्ता इस घर के अंदर से सारी इस तरह की सपोर्ट्स ख़त्म करें, तो ये घर क्या है? मलबा है ना। दीन मलबा बन जाता है जब आप नबियों के तरीकों और उनकी जगह को वहां से निकाल देते हैं। और एक दफ़ा नबी जो होते हैं ना, ये बहुत बड़ी रुकावट होते हैं ख्वाहिश परस्तों के रास्ते की। कहते हैं यस वी लव गॉड, पर कौन सा गॉड? अब नबी कहते हैं गॉड वो है जो आसमान पे, आप कहते नहीं, गॉड वो है जो स्लीप पे लटक गया था, आप कहते हैं गॉड वो है जो बुत के आगे मैं बैठी हूँ, और आप कहते हैं गॉड तो मैं खुद हूँ। पहले तो लोगों ने एक बुत को पूजा था ना अल्लाह के मुकाबले में, हर कौम ने। आज के दौर में कहते हैं हर चीज़ ही खुदा है, अंदर तू, बाहर तू, ऊपर तू, नीचे तू, मैं भी खुदा, तू भी खुदा, और सारे मिलके खुदा बने हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा कसरत से आम हो रहा है। लाखों की तादाद में लोग इस अकीदे के पीछे आज जा रहे हैं, सुकून के लिए, खुदा के लिए लड़ो ना। मेरे पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, मैं अपनी क्लासेस में दिखाती हूँ जहाँ मौका मिलता है, कि देखो गालियाँ देते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग हैं और लोग उनको अब सजदे कर रहे हैं कि ये अब हमारे खुदा बन गए। ये बात वो कहते हैं नहीं, सुकून चाहिए ना, मज़हब की बात ना करो, मज़हब ने क्या दिया? वो तो लड़ाता है, वो जंग कराता है। उनको ख़त्म करो और प्यार की बातें करो। तुम हिंदू हो तुम भी आ जाओ, तुम मुसलमान आ जाओ, तुम सिख हो आ जाओ, तुम आ जाओ, और सारे मिल के फिर अपनी मर्ज़ी का एक तरीका बना लेते हैं और उसको पूछते हैं, और फिर पूछते हैं उसी को हैं जो बात करता है। सजदे करते हैं लोग उसको, उनके हाथ चूमते हैं, उनके बुत बना बना के रखते हैं अपने पास, कि हम अब आपको कर वही रहे हैं फिर जो दूसरे कर रहे हैं। वो हिंदू कह के करते हैं अपने आप को, इन्होंने अपना एक नया नाम रखा। तो इसके तो बहुत सारे एंगल हैं, इसलिए इस वक्त आंखें खुलने की ज़रूरत है। जब तक कुरान को नहीं समझेंगे जो एक रेसिपी बुक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं समझेंगे, उनका तर्ज़ ज़िंदगी, उन्होंने हर चीज़ का रेशन प्रोपोर्शन दिखा दिया, तो आने वाले सालों में फिर दीन उस तरह से सिक्योर नहीं रहेगा जैसे कि इसको होना चाहिए। इस पे बात जितनी भी कर लें कम होगी, लेकिन इसकी अहमियत हमें समझ आ गई कि जब बीच अंदर जाता है अल्लाह के मामलात और अकीदे की बातें, फिर ठीक है। अब इसका इजहार देखिए कि नेकी का फिर दूसरा अमल क्या है, वातल माल आला हुब्बिही, फिर माल दे। ये माल देना भी राइटियस डीड्स में आ जाता है। कैसे? अल्लाह की मोहब्बत में। माल दो अल्लाह की मोहब्बत में। किसको दो? नंबर एक ज़विल कुरबा, रिश्तेदारों को दो। कहते हैं इनको तो हम बहुत देते हैं, नहीं रस्मन नहीं दो, बच्चे की शादी पे तोहफा समझ के नहीं दो, बल्कि कुर्बत का रिश्ता समझ के दो। हम उसको देते हैं जो हमें देता है। 50-40 साल पहले डायरी खोल के देखते हैं, देखना मेरे बच्चे की शादी पे ये क्या दे गई थी, अब मैं भी इनको दे हूँ। चाहे वो रुपया उस वक्त से लेके आज तक 10,000 गुना बढ़ चुका है, आप कहते हैं नहीं ये 50 दे गई थी, मैं 51 ही दूंगी। गाँव में देखा होगा जब लोग बैठते हैं तो दूल्हा को देते हैं तो सर लिख रहे होते हैं, क्या सलामी दी है दुल्हन को, मेरी बहू को क्या दिया और मेरे बेटे को क्या दिया। ये कराबत नहीं होती। कराबत क्या होती है? जो तुझसे कटे तो उससे जोड़, जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, जो तेरे साथ बुरा मामला करे तो उससे अच्छा कर। इस लेवल पे लाके ज़रा हम भी अपनी एक चेकलिस्ट बना लें कि मैं कितनी रिश्तेदारियों को निभाती हूँ। बस लोग सोचते हैं हर बच्चे की अगले की शादी पे पहुँचना ये रिश्तेदारी है। हम अमेरिका में, हम नॉर्वे में, हम लंदन में, बच्चे की शादी हो हमारी बहन के, हमने पाकिस्तान पहुँचना, चाहे 50,000 का टिकट लग जाए, ये है रिश्तेदारी। ये कोई रिश्तेदारी? हम कहते हैं रिश्तेदारी क्या, आप चुप करके बैठो, जो भी वो खराफत कर रहे हैं क्या करें भाई, अब ये तो कतर रहमी हो जाएगी। तो मैंने आपको एक सिंपल सी डिटेल दे दी कि कराबत दारी क्या है, कि जहाँ आपके अपने कोई इमोशंस भी नहीं है, लेकिन आप इस तरह किसी से मिले कि वो आपसे कटता है। हम खुद को पूछें अपने ऊपर रख के, हम किस रिश्तेदार को उसकी सारी गलत बातों, उसके सारे तानों, उसके सारे हमारे मामले में नेगेटिव प्रोपेगंडे के बावजूद अल्लाह का हुक्म समझ के फिर भी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, इल्ला माशाल्लाह। दुआ करें अल्लाह कोई रिश्तेदार आपको ऐसा दे जो आपकी बुराई करे, जो आपको बदनाम करे, जो आपको ताने दे, और आप जाके उसके बदले में उसे अच्छा मामला करें ताकि ज़वील कुर्बा के साथ अच्छे मामले का अजर पा सकें। खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी सासें उनको ताने देती हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके भाई बहन उनके हिस्से मार के खा जाते हैं। आपके पास मौका है, जाओ दे दो अल्लाह की मोहब्बत में, उनसे कुराबत करो। और ये बहुत मुश्किल होता है उस बंदे के लिए जिसके दिल में भी मना मना बिल्लाह की गिरानी पक्की हुई। इसलिए रिश्तेदारों में दो, वल यतामा कटे पटे लोग, माशरे के बिल्कुल लेफ्ट ओवर पीपल। यतामा का लफ्ज़ अरबी में दो मानों में आता है, यतम या तामीम इसका रूट है, कटा हुआ। यतीम कौन होता है? वो सोसाइटी से कटा हुआ होता है, आइसोलेटेड। यकीन करें भाई बहनों के बच्चे तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक भाई बहन है, अल्लाह उनको सलामत रखे। बाद में आप उनको दे देंगे खैरात समझ के, उनकी मदद करके, वो मोहब्बत नहीं आती दिल में जो माँ बाप के सामने आती है। आप आजमा लें, माँ के घर में बेटी रहने आई हो, उसके बच्चों को नानी गोद से नहीं उतारती, और खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में उस बेटी के बच्चे पालने पड़ जाएं तो नानियाँ उठते बैठते ताने देती हैं। अल्लाह ना करे कोई किसी के दर पर जाए, लेकिन ये रिश्ते सिर्फ तबके जब ये आपके लाड और चाव करते हैं, जब आपके रिश्तेदारों के पास दौलत है, खाना पीना है, यहाँ से फ़ोन करते हैं हम आ रहे हैं आपके घर रहेंगे 4 दिन, और पता चल जाए कहीं जाएंगे तो हो सकता है बिजली भी ना हो और वहाँ हीट इतनी ना हो और वहाँ खाना नहीं, तो फिर कहते हैं हम मौके ही नहीं मिला, आके बिजी बहुत थे, बस आखिरी दिन आए हैं, शाम को एयरपोर्ट जाना है। वो भी इसलिए मुँह दिखाई में जाना है कि वो बाद में सुनेंगे अच्छा आई थी और मिले बगैर चली गई। ये कहानियाँ बहुत लंबी हैं, हम इस वक्त सिर्फ खुलासा कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उसको भी मिलो जिस जो यतीम है। और दूसरा जो लफ्ज़ है ना यतीम का मानी, उसमें क्या ताखीर, देर से मिलना। और यतीम को भलाइयाँ देर से ही मिलती हैं, जो रह जाता है वो कहता है अब इन यतीमों को भी दे दो। अल्लाह उनके हकूक हमें पूरे करने की दावत देता है जो अपने हक मांग भी नहीं बेचारे सकते। फिर मसाकीन वल मसाकीन, मिस्कीन सकना से सुकून, सकना यानी जिसका वक्त रुक गया, हैंड टू माउथ लोग, कपड़े ले लें बच्चों के तो खाना नहीं है, जूते खरीद लिए हैं तो सर के कपड़े खाली हैं, फिक्र ही लगी हुई है क्या फीस दें कि बिजली का बिल दें कि पानी का दें, ये सब मिस्कीन है। आपने फरमाया कि मिस्कीन वो नहीं है जो एक एक लुकमे के लिए दर दर फिक्र फिरता है, वो तो भिखारी है, वो फकीर बन जाता है। फिर मिस्कीन वो है जो अपना हाल छुपाए, लेकिन छुप नहीं रहा, गुजारा नहीं हो पा रहा। ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, आपके मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनके साथ अच्छा मामला करें, उनकी इज्जत का भरम रखें। सफ़ेद पोशी है उनकी तो उनको बदनाम किए बगैर, दूसरों को बताए बगैर उनकी अल्लाह की रजा के लिए मदद करें, इससे पहले कि वो आपसे मांगे, आपके यहाँ फिर आएंगे मांगने, आप पहले ही दे दें, तो फिर मिस्कीनी का हक अदा होगा। फिर उसके बाद फरमाया वबन सबील, रास्ते के बेटे, मुराद है मुसाफिर। इंसान अपने घर में चाहे करोड़पति हो, बाज़ दफ़ा सफ़र में ऐसी हालत आ जाती है कि लिमिटेड चीज़ें होती हैं, आपके पास पैसे ख़त्म हो सकते हैं, कपड़े ख़त्म हो सकते हैं। मुसाफिर का लफ्ज़ सुन के हम बड़े हैरान होते हैं कि हत्ता कि मुसाफिर पे ज़कात तक लगती है, वजह के जेब कट गई। और उस दौर के मुसाफिर थे जब सहराओं में खाना ही नहीं होता था, आज तो माशाल्लाह कार्ड्स ही बड़े हैं जेब में, जहाँ बैठेंगे दुनिया में चला लेंगे, हमें पैसों की क्या कमी है। और रास्तों में कितने होटल और मोटल हैं आज हम नहीं समझ सकते, लेकिन आप उस कल्चर में देखिए जहाँ लोग सहरा में अगर रास्ता भटक जाते थे तो आता है कि उनको अपनी मौत दिखती थी आँखों के आगे, जो पता नहीं अब हमने कितना बिलक बिलक के मरना है कि जब तक रास्ता नहीं मिलेगा और किसी को पता ही नहीं। आप खुद सोचें ना, आप सबके सेलफोन बंद कर दिए जाएँ और आप किसी नए शहर में भेज दी जाएं, तो कितना आपका दिल घुटेगा कि पता नहीं हमारे पास तो उनके पास तो नंबर भी नहीं है हमारा, तो आप इसको सहराओं पे लेके जाके देख लें तो कितनी बड़ी बात होगी। कितना प्यारा हमारा दीन है, एक तरफ झुकने को नेकी नहीं कह रहा, अल्लाह के हक भी दो, इबादत भी करो, और फिर अल्लाह के बंदों के साथ भी मामला अच्छा रखो। फिर उसके बाद अगली चीज़ देख लेते हैं, वसाइलीन सवाल करने वाले, कुछ सवाल ही भी होते हैं। कभी बंदे को अपने हाल खुद ही पता होते हैं, फिर मांगना ही पड़ जाता है, क्या करें फिर, खुदकुशी तो नहीं करनी, तो फिर सवालियों को भी दो, इनको डांटो नहीं। बस लोग बहुत ज़्यादा जलील कर देते भी हैं 4 बातें सुना के, और यूं फेंकते हैं नोट गाड़ी के शीशे में से निकाल कर जैसे कि किसी को कोई आपने हड्डी डाल दी, ऐसा ना करें। कोई सवाली आपके पास आता है ना, तो असल में वो आपको नेकी दे के जाता है। मौका आया आपके पास कि तुम कुछ नेकी कमाना चाहते हो, एक लम्हे के लिए सोचा करें कि जो रब मुझे दे सकता है क्या वो उनको नहीं दे सकता। देखिए, बस दफ़ा हमारे अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में कई लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, किसी माली मुश्किल का शिकार हो गए। अब आप सोचते हैं उनके बच्चे की शादी आ गई, वो बीमार हो गए, उन्होंने घर बनाना है, कई प्रॉब्लम है ना। सोच के दो एंगल हैं, एक आप कहेंगे लो मुश्किल आ गई, अब इन बीमार हो गए, अब हमें इनको देना पड़ेगा, और दूसरा आप सोचें इनकी जगह मैं भी तो बीमार हो सकती थी, तो ये पैसा मेरा लगना था, अल्लाह पकड़ उसको देती हूँ, मेरी बीमारी डाल दें। आप शुक्र करें कि अल्लाह उसने हमारी बीमारी सहली और मैं पैसा देने को तैयार हूँ, कैसे दिल खुलता है। लेकिन जब दिल के अंदर माल ऐसे बसा होता है ना कि जैसे इंसान की जिस्म के अंदर खून रचा हुआ है, तो याद रखे अपनी ज़ात पे हज़ारों लगे कहते हैं कोई बात नहीं, और जब अल्लाह के रास्ते में देना होता है तो पुराना रेस गाड़ी निकाल के देते हैं। बाज़ दफ़ा मैं देखती हूँ ना कि लोग जो है ना वो अल्लाह के रास्ते में देने के लिए घंटा लगाते हैं, ढूंढते हैं, नोट छोटा नहीं मिल रहा, बाज़ सारे पर्स का चेंज उठा के वो डब्बे में डाल जाते हैं कि जी ये दे दें अल्लाह को। तो अल्लाह को क्या परवाह है, अल्लाह को चेंज भी कोई ना देगा तो अल्लाह को क्या लगे, उसके लिए क्या मुश्किल है। देखिए, खर्च का एक मेयार समझाने के लिए आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, गनी नाम था उनका, लकब पड़ गया, ऐसे ही नहीं लकब मिलते। उनका वाक्य है कि नबी सल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कोई सवाल किया, आपके पास उस वक़्त नहीं था, लेकिन आप अपनी नेकी छोड़ते नहीं थे, फ़ौरन दूसरे पे डाल देते थे कि उधर चले जाओ शायद वो नेकी कर दे। उस शख्स को आपने हज़रत उस्मान के घर पे भेजा कि उनसे सवाल करो, हो सकता है वो आपकी मदद करें। वो सहाबी हज़रत उस्मान के घर के बाहर आए, और उस दौर में हमारी तरह इस तरह सील डोर और उस पर भी अलार्म सेफ्टी अलार्म लगे हुए नहीं होते थे, दरवाजे भी नहीं होते थे, पर्दे लगे होते थे सिर्फ। घर के करीब आए तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, हज़रत उस्मान झगड़ा कर रहे हैं अपनी बीवी से कि जब एक लाइट जला के गुजारा हो सकता था तो तुमने दो चिराग क्यों जलाए, हम ही अपनी देख लें कितनी लाइट है। मुझे कितनी दफ़ा ख्याल आया, जब हमारे स्कूल की होती तो मैं बंद करा चुकी होती, यकीन करें, ये बैठी बच्ची पास गवाह है, ऐसे ही होता है। मैं कहती जब लोग आते हैं उस वक़्त ज़रूर चलाएं, और जब लोग जाएं सबसे पहले बंद करें, हिसाब देना है इसका, ज़ाया को एक लाइट भी गई तो कल पता लग जाएगा। बहरहाल वाक्य पे आ जाइए, सुना कि हज़रत उस्मान अपनी बीवी से नाराज़ हो रहे हैं कि दो चिराग क्यों जलाए भाई, तुमने अल्लाह की बंदी एक के साथ है। अब ये बात सुन के इस बंदे को हौसला ही नहीं हुआ कि जो शख्स इतना नाउज़ुबिल्लाह कंजूस है कि एक चिराग जलाने पे झगड़ा कर रहा है, मुझे क्या देगा, बगैर सवाल किए चले गए नबी सल्लम के पास। कहा क्या हुआ, कहा नहीं मेरा ख्याल है वो मुझे नहीं देंगे, मांगा था, कहा नहीं मांगा नहीं, कहा जाओ मांग के आओ पूछो। कहा अच्छा, फिर गए दरवाज़ा, जो भी वहाँ गए आवाज़ लगाई कुछ किया, हज़रत उस्मान बाहर आए, का ये मुद्दा है इस वजह से अल्लाह के नबी ने भेजा ज़रूरतमंद हूँ। कहा अच्छा ठहरो मैं भी आता हूँ। अंदर गए, अशरफियों की थैली यानी सिल्वर कॉइन्स वो ला के तो इनके हाथ में रखी। अब इस शख्स से रहा ना गया, कहने लगे सच बताओ अभी थोड़ी देर पहले तो मैं आपकी आवाज़ें सुन चुका हूँ, आप अपनी बीवी से लड़ रहे थे और अभी मैंने मांगा, आपने इतनी खतीर रकम दे दी, यानी कई ग्राम सोना आप लगा लें आज के दौर में, एक अशरफी कितने माशे की होती थी। कहा हाँ दोस्त, वो जो चिराग जलता वो मेरे खाते में पड़ता, उसका मुझे हिसाब देना पड़ता, और ये तो अल्लाह के रास्ते में मांग रहा है, अल्लाह हुब्बी ही, अल्लाह ऐसा दिल दे दे। अपनी ज़ात पे एक क्रोन भी लगाएं तो सोचे ज़रूरत थी, चल सकते थे तो बैठने की क्या ज़रूरत थी बस में, और जब बस में जा सकते हैं तो टैक्सी मंगा के क्या आपको मिल गया, और जब अल्लाह के रास्ते में दें तो कह अल्लाह तेरा मेरा माल है, तेरा मेरा एक खाता, अल्लाह का खाता अपने से अलग ना रखें, अल्लाह है सारा तेरा, कभी कभी मैं भी यूज़ कर लूँगी, मुझे ज़रूरत पहले पड़ गई मैं ले लूँगी अपने पैसे, और तेरे रास्ते में ज़रूरत पड़ी तो दे दें। और तारीख गवाह इस बात पे, मुसलमानों को जो अरूज मिला था ना उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुसलमान अपने लिए नहीं बचा के रखते थे कि मैंने घर बनाना है तो उसके लिए बचा रहा हूँ, और मैंने बच्चों की शादियाँ करनी है, और हमारा हाल यह है कि बच्ची ज़रा सर उठाती है तो हम उसका जहेज जमा करना शुरू करते हैं। अकल मत सिखाते कोई नहीं, अदब अखलाक सिखाते कोई नहीं, वही पैसे लगा के उसकी तरबियत कर दें तो शायद वो बच्ची ज़्यादा सुरखरू हो, और उसको पोटलियाँ भर भर के जहेज़ की बेचते हैं, और अल्लाह ही बचाए तो बचती हैं, वरना जल्दी वापस भी आ जाती हैं। क्या वजह कि हमने सिर्फ दुनिया की चीज़ों से रिश्तों को ख़रीदना चाहा और हमने सोचा कि सिर्फ दुनिया की चीज़ें दे के हम बच्चियों और बच्चों को खुश रखेंगे। नहीं को खुश रख सकता। अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कभी दिल तंग ना करें। और ज़िंदगी में कई मौके आते हैं, ये एक अपनी जगह अलग मौजू है, कि बाज़ दफ़ा अल्लाह के दीन को इतनी ज़रूरत पड़ जाती है कि खाली कर दो। वो कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु तबूक के मौके पे जब जा रहे थे तो अपनी दीवार पे छड़ी मार मार के देख रहे थे कि कहीं कोई अंदर किनारों में कोई शतीरों में चीज़ छुपी हुई तो नहीं, वो भी जमा कर करके तो अल्लाह के नबी के पास आ गए कि पूरे घर का ही सामान ले गए। उमर फ़ारूक आधे घर का सामान ला के खुश थे, आज मैं अबू बकर से भट जाऊँगा, और पता चला अबू बकर पहले ही पूरा ले आए हैं। कहा अबू बकर आपसे मैं नहीं जीत सकता। कभी आपने आज तक ये लफ्ज़ सुना कि अबू बकर का था कितना, कितने कंटेनर से बाहर खड़े, इकिया के और फलां के और कितने ब्रांड नेम थे उनके पास। अल्लाह नहीं पूछता कितना दिया, अल्लाह ये देखते पीछे कितना है। हम देखते हैं फलां ने क्या दिया, अल्लाह ये देखता है कितने में से दिया। देखिए सिंपल सी बात है, एक बंदा 50 रुपये देता है और एक बंदा 5,000 देता है, देने वाले में को देखा जाए तो 5,000 ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह को पता है जिसने 50 दिया उसके पास थे ही 60, 10 रख लिए मजबूरी के लिए और 50 दे दिए, और जिसने 5,000 दिया उसके पास अभी 25,000 पड़ा हुआ है। अल्लाह परसेंटेज देखता है, अल्लाह दिल देखता है, हमारा दिल कितना किस चीज़ के लिए पड़ा हुआ है। जहाँ हमने लगाना होता हम 1,000 का सोफ़ा आराम से ले लेते हैं, हम 1,00,000 की गाड़ी आराम से ले लेते हैं, हम 1,000,000 का घर आराम से ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी वर्थ है। और जिस चीज़ की वर्थ का नहीं पता तो हम 1-1 करोड़ पे झगड़ते हैं, हम 1-1 पाउंड है आपके पास उस पर झगड़ते हैं, हम कहते हैं क्या जरूरी तो मुफ्ती हो जाए तो बहुत ठीक है। यानी ये जो सदका होता है ना, लफ्ज़ सिद्क से, सिद्क कहते हैं सच्चाई को, कि आई एम सिंसियर। जब तक सच्चाई अल्लाह की अल्लाह से मोहब्बत में आती नहीं, आतल माल अला खुबी पीछे फिर लाकिन बिल बिर मन आमना से कनेक्शन जुड़ता है इसका। एक दफ़ा दिल में अल्लाह की मोहब्बत भर गई, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह के रास्ते में माल की ज़रूरत हो और हम अपने जमा करके रख लें। जो अभी आने अंदेशों में रखा हुआ है मुस्तकबिल की तलाश में, पता नहीं उन बच्चों ने बड़े भी होना नहीं जिनके गम में रखा हुआ है, अल्लाह का दीन मुफलिस कलाश पड़े तो पड़े, कोई परवाह नहीं है। लेकिन वक्त बदल जाता है, कभी इस्लाम में तबूक आती है तो कभी फिर होना ही ना आता है कि जिसमें इतना माल है। सिर्फ ज़रूरत और वक्त की बातें होती हैं। आज जो उम्मत मुस्लिमा की हालत है ना, इसमें बाकी फैक्टर्स जो उसको छोड़ दें इस पर हम अलग कभी बात कर लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ आई अपने नाकस इल्म के बाद और गौर व फिक्र के बाद, कि हम मुसलमानों ने अपने पैसों को, अपने माल को अपनी ज़ाती जागीर समझ लिया। हम दीन पे लगाने को एक बस समझते हैं कि बड़ा एहसान नहीं कर दिया, चंदा डाल दिया मस्जिद में जाके। मैार देखिए, जो बंदा अपना अल्लाह से ताल्लुक़ देखना चाहता है ना, वो देखे कि मैं अल्लाह के लिए कोई चीज़ वक्त मांगे, कोई पैसा मांगे, माल मांगे, कोई एफर्ट मांगे, या अल्लाह का दीन आ गया बीच में, तो मेरे मेयार के हैं और दुनियादारी के क्या हैं देख लें। यहाँ से मैं अपने दिल का पता चलता है। बाज़ दफ़ा हम अपने घर ही नहीं खोलते इसलिए कि रहने दो, अब अल्लाह के नाम पर खोले तो बच्चे आएंगे सोफ़े गंदे हो जाएंगे, और आप बाज़ अपने घर खोल देते हैं। तो ये हम उससे नहीं छुपा सकते, हम शौहरों से अपना माल छुपा सकते हैं, बल्कि 95% औरतें छुपाती होंगी, और 5% सिर्फ वही नहीं छुपाती जिनके शौहर केयर ही नहीं करते। हम अपने शौहरों से छुपा लेते हैं हमारे पास कितना माल है, रिश्तेदारों से भी छुपा लेते हैं, उनको कहते हैं नहीं इकोनॉमी डूब गई है, ख़राब हो गई, इधर ही खर्चे बढ़े हैं, अब आपको क्या भेजें। लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकता, उसकी नज़र ऐसी है जैसे शीशे में से कोई चीज़ दिखती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दो उनको व फिर रिकाब, गर्दने भी छुड़ाया करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इशू नहीं है, गुलामी तो ख़त्म है, लेकिन कई बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं, कई मुश्किलात की गुलामियों में पड़े हुए हैं, कोई फ्लॉप हो गया, किसी की बैंकरप्सी हो गई, बिजनेस डूब गया, बस अपने माल को अपना समझने की बजाय अल्लाह के इस कुंबे के साथ शेयर करो।